हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। काली शक्तियों के मालिक अमित की बात सुनकर वो लड़की अपनी आंखें गोल गोल घुमाने लगी, फिर कुछ सोचते हुए बोली, हमारा नाम गुड्डी है। ओह वेरी नाइस, तो फिर मेरे साथ चलो, क्योंकि आज ही मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी तुम्हारे माँ बाप के सामने, और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रहोगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें अपने परिवार वालों से रिश्ता खत्म करना होगा। आज के बाद तुम उन भिखारी लोगों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखोगी। अमित की बात सुनकर कुछ पल के लिए वो लड़की सोचने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तो कब से उन लोगों से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। उन लोगों का पेट पालते पालते मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं तो खुद चाहती थी उन लोगों से मेरा किसी तरह से पीछा छूटे, और अगर आप कहें तो मैं उनके बिना भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज ही अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की का उतावलापन देखकर, उसकी बातें सुनकर अमित उसे हैरानी से देखने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो सोच ही रहा था कि इस दुनिया में केवल मैं ही एक हरामी हूँ, लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे लगता है मुझे अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ये लड़की तो मुझे भी कुछ ज्यादा ही आगे है। कुछ सोचते हुए अमित जोरों से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारे माँ बाप किसी भी तरह का कोई लफड़ा मेरी जिंदगी में पैदा करें, इसीलिए। और हाँ, तुम्हें उनकी फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम उनकी कोई खास फिक्र नहीं करती, फिर भी मैं उन्हें इतनी दौलत दूंगा कि उन्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित की बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। वो सब कुछ भूलकर एकदम से अमित के गले लग गई। जैसे ही वो लड़की अमित के गले लगी, अमित के छुपे हुए जज्बात एकदम से बाहर आ गए। उसका पूरा जिस्म पत्थर सा हो गया था। उस वक्त उसे लड़की को पाने की चाहत उसके दिल में जन्म ले चुकी थी, लेकिन बिना शादी के वो उसे नहीं छू सकता था। इसीलिए उसने उस लड़की से कहा, तुम चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके घर की ओर उसे लेकर रवाना हो गया। मल्लिका उन दोनों को हैरानी से जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, राम मिलाई जोड़ी। उस लड़की ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि जो उस घर में ये खूबसूरत लड़की है, ये कौन है, क्योंकि उसे सिर्फ अमित की दौलत ही दिखाई दे रही थी। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक उसने भीख ही मांगी थी, और भीख मांगकर लोगों की जूठन खाकर ही उसने अपना गुजारा किया था और अपने परिवार का पेट पाला था। और आज अचानक से उसे इतनी सारी दौलत, जमीन जायदाद और वो भी शादी करके मिल रही थी, तो भला वो खुश क्यों नहीं होती। उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और वैसे भी गरीबी ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि उसे किसी भी रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर तारा करिश्मा जी के पहुंचने से पहले ही अमन के घर पर पहुंच चुकी थी और अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। करिश्मा जी जैसे ही घर के अंदर गईं, उन्होंने सोचा, क्यों ना एक बार तारा को देख लिया जाए कि वो क्या कर रही है, और इसीलिए वो तारा के कमरे में आ गईं। जैसे ही वो तारा के कमरे में गईं, उन्होंने देखा तारा बहुत ही आराम से सोई हुई थी। करिश्मा जी उसके पास बैठीं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलने लगीं, आज फिर मेरा अनुष्ठान पूरा होते होते रह गया। ना जाने कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और अपने दादा को ढूंढ कर लाएगा। बस मेरी बच्ची जल्द से जल्द इस बच्चे को इस दुनिया में ले आए, फिर देख ये कैसे आकर अपनी दादी की सारी परेशानी खत्म करता है। करिश्मा जी की बातों में उनका टूटा हुआ जज्बात साफ साफ नजर आ रहा था। करिश्मा जी का दिल काफी ज्यादा टूटा हुआ सा लग रहा था। तारा करिश्मा जी की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और साथ ही साथ अपने मन में मजबूत इरादा कर रही थी कि वो उस काले सांप का तो पता लगाएगी ही लगाएगी, साथ ही साथ करिश्मा जी से भी इस बारे में पूछताछ करेगी। वहीं अगली सुबह तारा की आंख जल्दी ही खुल गई, क्योंकि अमन आज उसके साथ नहीं था तो उसे खालीपन बहुत ही शिद्दत से महसूस होने लगा और वो ज्यादा देर सो नहीं पाई। वो उठकर सीधा करिश्मा जी के पास नीचे आ गई, क्योंकि करिश्मा जी बहुत कम सोया करती थीं। हालांकि पूरी रात उन्होंने अनुष्ठान किया था, लेकिन वो चेहरे पर एक ताजगी के साथ हाल में बैठी हुई थीं। तारा ने करिश्मा जी के गले में अपने दोनों हाथों से हार डाल दिया और उनके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मॉम, आप बड़े जल्दी उठ गई हैं। तारा के प्यार पर करिश्मा जी मुस्कुरा उठीं और बोली, ओ मेरा बच्चा उठ गया, आजा आजा मेरे पास, आज बहुत अच्छा लगा, तुम भी आज जल्दी उठ गईं। आज दोनों माँ बेटी बैठकर चाय के साथ गपशप करेंगी। करिश्मा जी हल्का सा मुस्कुरा दीं। तारा भी करिश्मा जी को हर हाल में खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो भी करिश्मा जी की बातों में हाँ मिलाने लगी। वहीं विक्रांत रंधावा भी जल्दी उठकर तैयार हो गया था। उसे आज रह रहकर इसी चीज़ की खुशी हो रही थी कि आज वो तारा के साथ ऑफिस जाएगा। तारा सारा दिन उसके साथ ऑफिस में उसके सामने रहेगी और वो ज्यादा से ज्यादा समय तारा के साथ बिताएगा। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उसे बेचारे को दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि तारा तो 7 दिन की लीव पर है। विक्रांत जैसे ही नीचे तैयार होकर आया, उसने देखा पूरे हाल में, पूरे किचन में कहीं भी तारा और करिश्मा जी दूर दूर तक उसे दिखाई नहीं दिए। विक्रांत को काफी बुरा लगा। उसने तो सोचा था कि सुबह उठते ही आज वो सबसे पहले तारा को देखेगा, उसकी शक्ल को देखेगा, लेकिन यहाँ पर तो उसे ना ही करिश्मा जी दिखाई दीं और ना ही तारा। फिर कुछ सोचकर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे गार्डन में से किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। गार्डन में आ रही आवाज़ों को सुनकर विक्रांत समझ गया कि तारा जरूर गार्डन में है, क्योंकि तारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से हंसती थी और उसकी हंसी की आवाज़ से चारों तरफ का माहौल खुशनुमा सा हो जाया करता था और एक एक फूल खिल जाया करता था। विक्रांत जल्दी ही गार्डन में उन दोनों की आवाज़ सुनता हुआ चला गया। जैसे ही करिश्मा जी की नज़र विक्रांत पर पड़ी, वो उसकी ओर देखने लगीं और बोली, अरे विक्रांत बेटा, तुम उठ गए हो, मुझे बता देते, इतनी जल्दी तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। करिश्मा जी की बात सुनकर विक्रांत पास में पड़ी हुई एक चेयर पर बैठ गया और बोला, अरे आंटी, अमन ने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, तो बस मैं ऑफिस के लिए ही तैयार हो गया हूँ। अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गया है तो वो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तब करिश्मा जी ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, हाँ हाँ बेटा, वो तुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए अपने पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी तेरे हाथों पर सौंप गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू जरूर अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएगा। करिश्मा जी की बातें सुनकर विक्रांत भी एक फीकी सी हंसी हंस दिया और फिर तारा की ओर देखते हुए बोला, अरे तारा जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। जैसे ही विक्रांत ने ये कहा, करिश्मा जी बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं बेटा, क्या तुझे ये नहीं पता है कि तारा आज से ऑफिस नहीं जाएगी, ये 7 दिन की छुट्टी पर है, जब तक अमन नहीं आ जाता तब तक ये 7 दिन मेरे साथ बिताएगी।
क्या या जैसे ही विक्रांत ने ये सुना, उसका शौक से बहुत बुरा हाल हो गया और वो बिना किसी की परवाह किए अचानक से बोला, ये आप क्या कह रही हैं? ये छुट्टी कैसे ले सकती है? हाउ इज दैट पॉसिबल? और ये मुझे बताया पहले क्यों नहीं बताया? जैसे ही विक्रांत ने इतने सारे सवाल एक साथ कर दिए, करिश्मा जी उसे घूर कर देखने लगी। वहीं तारा भी विक्रांत के इस तरह के सवालों को सुनकर हैरान हो गई और उसकी ओर देखने लगी। तब विक्रांत को अपनी बातों की सख्ती का अंदाज़ा हो गया और वो बातों को पलटते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब ये था, ये तो ऑफिस की हेड मैनेजर हैं, अगर ये छुट्टी पर रहेंगी तो ऑफिस का काफ़ी सारा काम पेंडिंग में चला जाएगा। तब तारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विक्रांत से कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं विक्रांत जी, क्योंकि मैं पहले ही अपना 7-8 दिनों का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इतना ही नहीं, बाकी का काम मैं घर से रहकर ही लैपटॉप के थ्रू कर लूँगी। अमन मुझे अपना लैपटॉप दे कर गए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऑफिस का कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, और फिर आप तो ऑफिस जा ही रहे हैं, बाकी का काम तो आप वहाँ पर जाकर संभाल ही लेंगे, और मैंने 7 दिन की लीव एप्लीकेशन भी अमन को दे दी थी। जैसे ही तारा ने ये सब कुछ कहा, विक्रांत का गुस्से से बहुत बुरा हाल हो गया, लेकिन वो अपना गुस्सा वहाँ उन दोनों के सामने नहीं दिखा सकता था, इसीलिए वो एक कॉल करने का बहाना बनाकर वहाँ से उठ गया। जैसे ही वो उठकर वहाँ से गया, करिश्मा जी उसे देखने लगी। विक्रांत को इस तरह से बेचैन जाता हुआ देखकर करिश्मा जी के मन में कितने ही सारे सवाल गूंजने लगे और वो विक्रांत को तब तक देखती रहीं जब तक विक्रांत उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया।